प्रातः क्लास चल रहा था, चार छः 1965 शुक्रवार, सातवें पेज के मध्य में बात चल रही थी। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा हुआ? और वो फिर आकर के क्या करते हैं? सर्व पतित को पावन बनाते हैं, तो सब का तीर्थ हो गया ना। सब धर्म वालों का तीर्थ हो गया भारत। अगर गीता में कृष्ण का नाम न होता, अभी तो ड्रामा अनुसार है, वो होता तो सब आकर के यहाँ फूल चढ़ाते, क्योंकि सर्व का सदगति देने वाला यानी जो भी इनके पैगंबर हैं, वो सभी अभी कब्र दाखिल हैं। वेद का बाप अगर ना आवे तो उनको सदगति कौन देवे? तो सर्व का सदगति दाता तो यहाँ भारत में आना चाहिए ना। वास्तव में बड़े से बड़ा तीर्थ है ये भारत खंड है। परंतु मालूम न होने के कारण कोई किसने तीर्थ बनाई दिया, कोई क्या तीर्थ बनाई दिया, अपना अपना तीर्थ बनाई दिया। नहीं तो ये भारत है सब का तीर्थ है। जैसे कहा जाता है बाप की महिमा परम अपार है, वैसे जहाँ आते हैं उस भारत की महिमा भी अपरम अपार है। क्योंकि भारत ही हेवन बनता है और भारत ही फिर हेल बनता है। तो महिमा कितनी बड़ी है हेवन की, अपरम अपार महिमा हेवन की कहेंगे। नाम ये हेवन, सारी दुनिया को जीतने वाला, और फिर अपरम अपार निंदा ये भी भारत की ही कहेंगे। अभी क्या हो रही है? अभी भारत किस स्टेज में है? अपरम अपार निंदा की स्टेज में है। अरे एकदम आसुरी संप्रदाय, ये समझने की बात है ना। बाबा कितना भारत को और सबको सदगति देते हैं। परंतु ये भारत खंड बहुत नामी ग्रामी है, इस भारत खंड की महिमा बड़ी भारी है। बड़ी भारी महिमा कहाँ है? है शास्त्रों में भी है, हिस्ट्री में भी है, सिर्फ एक नुकसान है कि बाप के बदले में बच्चे का नाम दे दिया तो सब खंडन हो गया। इसलिए बस शुरू ही हो गया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अब इस सतयुग को थोड़े ही झूठ कहेंगे, सत्य माना सत्य। और ये है आयरन एज कलयुग, कलह क्लेश का युग है, माना झूठ का युग। तो सत्यखंड बाबा स्थापन करते हैं और रावण आकर के इसको झूठ खंड बनाते हैं, फिर बाबा आकर के सत्यखंड बनाते हैं। देखो तुम अभी सच्चे बन रहे हो, बन रहे हो ना, सच्चखंड के मालिक बन रहे हो। यहाँ आते ही हो, क्यों आते हो? बाबा से बेहद का वर्षा लेने के लिए। और बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मनमना भव, मध्याजी भव। क्या मतलब हुआ? मेरे में मन बुद्धि लगाओ और फिर प्रैक्टिकल में क्या करो, मेरे में ही तन मन धन समय संपर्क संबंध साथ स्वाहा करो, यजन करो, मध्याजी भव। तो सर्व से बुद्धि योग हटाए, माम एकम याद करो। क्योंकि अब आना ही है मेरे पास, अब चाहे याद करो या न करो, फिर भी वापस तो सभी को आना है। याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे और बाप से नाली सुनेंगे। फिर बाप से वर्षा ले भी, वर्षा भी लेंगे और जीवन मुक्ति का वर्षा सबको मिलना है। कोई को अनेक जन्मों का मिलना है, कोई को एक जन्म का मिलना है, एक जन्म को सबको प्राप्त। परंतु सबको स्वर्ग का वर्षा तो नहीं मिल सकता, स्वर्ग का वर्षा तो राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। बाकी सर्व की सदगति तो होनी है ना, सबको वापस तो ले जाएंगे ना। इसलिए कहते हैं मैं कालों का काल भी हूँ, देखो ये काल तुमको बोलते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हें खा जाऊंगा। दंसा करालान चते मुखाने, मैं कालों का काल हूँ जो सबको चबा जाता हूँ, खा जाता हूँ, और तुम सब आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। वापस ले जाता हूँ तो खुशी होती है, महाकाल का मंदिर भी होता है। इसको काल नहीं कहेंगे, इसको फिर महाकाल। तो महाकाल का भी मंदिर है, बहुत जगह में है, चार छह पैंसठ की वाणी का आठवां पेज तीसरी लाइन। और महाकाल के मंदिर पहाड़ों पर भी है, पहाड़ों पर क्यों बनाई है? क्योंकि महाकाल ऊंची स्टेज में भी रहता है, तो ये सभी बातें बाप समझाते हैं। कौन समझाते हैं? जैसे तुम अपना स्वीट होम छोड़ करके यहाँ पार्ट बजाने के लिए आए हो, वैसे मैं भी स्वीट होम छोड़ करके आया हूँ। निर्वाण धाम है स्वीट साइलेंस होम, सभी याद भी निर्वाण धाम को करते हैं। कोई से भी पूछो, बौद्ध धर्म वालों से पूछो, बुद्ध कहाँ गया? पार निर्वाण गया। तो याद तो सब निर्वाण धाम को करते हैं ना? क्योंकि जीवन मुक्ति याद कराने वाला एक ही है। स्वर्ग याद कराने वाला और कोई नहीं है। बाकी ये मुक्ति का धाम, ये सन्यासी तो सब वहां ही जाएंगे। कहाँ है? मुक्ति धाम जावेंगे, सुख धाम नहीं जावेंगे है? कहते हैं स्वर्ग के सुख काग बिस्तर समान। आजकल भी मुक्ति का ही धूमधाम है, परंतु तुम बच्चों को तो जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर तुम्हारे लिए बाप आते हैं। ऐसे तो उनको भी जीवन मुक्ति चाहिए। अभी बंद है, तमोगुणी है, इस नॉलेज को कुछ भी नहीं समझते हैं। तो कहेंगे उनका अभी टाइम ही नहीं है। बाप ने समझाया है कि यादव संप्रदाय और कौरव संप्रदाय यादव सेना और कौरव सेना कहते हैं ना, और उनकी सेना में कौन कौन थे, ये सभी थे ना धृतराष्ट्र के बच्चे, राष्ट्र धन संपत्ति को कहा जाता है। धृत माने जिन्होंने धारण कर ली है धन संपत्ति सारी राष्ट्र की, ऐसे बड़े बड़े पूंजीपति धृतराष्ट्र के बच्चे यानी अंधे की औलाद, और उनकी सेना में कौन कौन थे, देखो ये आते हैं ना भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब किसकी सेना में थे, धृतराष्ट्र की सेना में थे, अंधे की औलाद अंधे। देखो अभी है ना बराबर, जिनको फिर तुमने जब बाण मारे हैं तो कन्याओं के द्वारा मारे हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि कन्याओं के द्वारा बाण मारे हैं, अभी बाण वो तो नहीं है हिंसक बाण, तो ज्ञान के बाण है। तब उन लोगों को पिछाड़ी में ये मालूम है कि बरोबर इनको ज्ञान का बाण मारना, इनको सिखलाने वाला बेहद का बाप है, बस इनको मारना ही मारना है, विनाश तो इस समय होना ही है, सो तो हो ही गए, तैयारी तो है ना। इन अंधे की औलाद अंधों ने कोई ज्ञान नहीं लिया है, वो तो कहते हैं वो मर गए, फिर अर्जुन ने बाण मारे हैं, बाण मारा तो गंगा निकल आई, अभी वो स्थूल बाण मारने से गंगा कैसे निकलेगी, कहां से निकलेगी, ये तो ज्ञान बाण मारने की बात है। अभी गंगा जल तो उनको मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, फिर बाण मारा और गंगा निकली, ये तो सब गपोड़े हो गए। तो कितना सहज समझने की बात है, समझते हो, फिर भी देखो ज्ञान ऐसा है कि बाहर में जाने से वो नशा उड़ जाता है, यहाँ बैठे हो तो प्रैक्टिकल में समझते हो कि बरोबर बाबा बैठ करके हमको यथार्थ रीति सारी सृष्टि का राज सुनाते हैं, बस यहाँ कोई को तो धारणा होती है और कोई को बाहर निकलने से ही क्लास हो जाता है, कोई को 1% धारणा, कोई को 2%, कोई को 5, कोई 10, कोई 50, कोई 90% धारणा बाहर जाने से उड़ जाती है। अभी तो ये नॉलेज ही ऐसी है, वो मर्क्यूरी चैम होती है ना, ऐसे खड़ा नहीं रहता है। कोई ने कहा बाबा पारा, वैसे ये योग भी खड़ा नहीं रह सकता है। ये योग घड़ी घड़ी टूट जाता है। कोशिश करते हैं कि हम आपको याद रखें, परंतु नहीं, ऐसा है जो वही याद करो और वही तिरक जाता है। ये योग ही ऐसा है। अच्छा टोली लाओ, प्राचीन योग तो बाप ही आकर के समझाएंगे ना। प्राचीन योग ये लोग कैसे समझाएंगे? सो भी भगवान वाच है, ये सन्यासी थोड़े ही भगवान है। तुम तो फट से कह दोगी कि शिव बाबा को याद करो तो जाग जाओगे। याद रहने में बड़ी मुश्किलात है। कहते हैं ना राम कहो राम कहो, जब मरने लग पड़ते हैं तो मित्र संबंधी गुरु गोसाई भी कहने लग पड़ते हैं राम कहो। कि कहाँ की यादगार है, कि सृष्टि के अंत समय की यादगार है। अभी मौत तो सभी का आना है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं शिव बाबा को याद करो, तो देखो इनका थोड़ा इशारा, और जो भूले हुए बैठे होंगे थोड़ा भी याद किया तो उनका फायदा तो बहुत हो जाता है। अच्छा अभी इधर आओ, मीठे मीठे सिकील दे ज्ञान सितारों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज का रात्रि क्लास है 4/6/1965। पार जाने वाले किनारे पर खड़ी रहती है ना, पीछे उसका लंगर उठाकर चलने लग पड़ जाती है। तो वास्तव में तुम बच्चे जैसे कि इस दुनिया से बहुत दूर चल गए, बाकी थोड़ा सा समय रहा है, इतना समय फिर रहा है जब तक कि ये शरीर है, बच्चे समझते हैं ना कि अब हम इसी दुनिया में हैं, बुद्धि इस दुनिया में नहीं है, यानी इस कलयुग में तो नहीं है, अभी हम संगम पर हैं, हम आत्माएं संगम युग में ट्रेवल कर रही हैं। तो जो जो जितना ट्रेवल करते हैं उनके लिए ही बाबा कहते हैं कि अपने पास चार्ट रखो कि हम कितना जल्दी जल्दी जा रहे हैं। वो जल्दी जाकर के रुद्रमाला में पिरोएंगे, जो जल्दी जल्दी बुद्धि योग से जा रहे हैं। तो ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि योग की रेस है और कोई की रेस नहीं है। तुम रूहानी रेस के अश्व हो, तुम बच्चों को अश्व यज्ञ का घोड़ा भी कहा जाता है। नाम दिया है अश्वमेध, इस मन रूपी घोड़े को मारने वाला में अश्व है। ज्ञान यज्ञ है ना, तो ये ऐसे है राजस्व यानी स्व की राजाई के लिए ये जो भी शरीर है सब मारे जाते हैं। शरीर छोड़ा जाता है ना, बाप कहते हैं ना अभी शरीर तो नहीं दौड़ी पहनेगा, शरीर तो जिस्मानी यात्रा में दौड़ी पहनता है, यहाँ आत्मा दौड़ी पहनने की है। ये दौड़ी पूरी होने की है, दुनिया नहीं जानती है, दुनिया तो इन बातों को कुछ भी नहीं जानती। ब्राह्मा ब्राह्मा का राज उनको कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। और ये भी जानते हो कि कल पहले भी बाप ने ऐसे ही कहा कि हे आत्मा हे अश्व तुम दौड़ी पहनो। क्योंकि ये भी तो घोड़ा इन पर विराजमान है ना, कौन सा घोड़ा किन पर विराजमान है, है? ये भी तो घोड़ा इन पर विराजमान है ना, यह भी तो घोड़ा कौन है इन पर विराजमान है, किन पर? है हाँ, जैसे हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, मालूम है जब ताजिए होते हैं वो बड़े बड़े ताबूत निकालते हैं, तो घोड़े पर उनका पटका रख देते हैं, तो ये तुम्हारा अश्व है, इसमें आत्मा विराजमान है, उनको अभी बाप मिला है, जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़ करके ले जाते हैं ना, वैसे ही जैसे कि बाप आए हैं तुम सब बच्चों को वापस ले जाने के लिए, तो सभी को फिर पावन बनाए, जगाए और ले जा रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो, इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते हैं, और तुम जानते हुए भी बिल्कुल गुप्त रहते हो, तुम्हारी नजर में ये जो भी मनुष्य हैं जिनमें ये पता भी नहीं है, वो बेगाने हैं, बेगाने आर्फन को कहा जाता है, उनको कुछ भी पता नहीं, क्योंकि बाप को जानना और षष्ठी चक्र को जानना ये तो मनुष्यों का काम है। तुम एक्टर्स हो ना, एक्टर्स को अगर अपने ड्रामा के आदि मध्यंत का और क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य प्रिंसिपल एक्टर्स के ऑक्यूपेशन का या उनके पार्ट का ही पता न हो तो उनको क्या कहेंगे। तो अपने पार्ट को जानना चाहिए ना, कौन क्रिएटर है, कौन डायरेक्टर है, कौन मुख्य प्रिंसिपल एक्टर है, उनकी ऑक्यूपेशन को जानना चाहिए। देखो अभी ये सारा भारत बंदर बुद्धि है, और नहीं तो मंदिर लायक तो बनना है, देखो ये भारत शिवालय था, ये बड़ा भारी चैतन्य मंदिर था, इसमें देवताएं निवास करते थे, रहते थे, चैतन्य शिवालय था, एक शिव का स्थापन किया हुआ, जिसे स्वर्ग कहो। अभी बच्चे तो बहुत खुशी में है, जिनको पूरा निश्चय है उनको ही पूरी खुशी होगी, और जिनको अभी अभी निश्चय और अभी अभी संशय, अभी अभी निश्चय यानी ऐसे ही नहीं कहा जा सकता है कि अरे भाई ये तुम्हारा क्या लगता है, तुम तो कहेंगे मेरा बाप लगता है। अच्छा कितना परसेंट तुमको निश्चय है, निश्चय है कि तुम्हारा बाप है? कहेंगे क्या कि हमको 30% निश्चय है, 75% निश्चय है, 90% या 100% निश्चय है? ऐसी बात कभी सुनी है कि हमें अपने बाप के ऊपर नंबरवार परिचय निश्चय है? बाप है तो है, और नहीं है तो नहीं है। ऐसी बात तो तुमने कभी नहीं सुनी होगी कि बाप में निश्चय की परसेंटेज होती है। हमारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं बाबा हमको 50% निश्चय है कि आप हमारे पारलौकिक बाप हैं। अरे बाप का निश्चय कोई ऐसे थोड़े ही होता है। बाप का निश्चय माना निश्चय। तो बाप की बात सिर्फ तुम जानते हो, जानते हो कि बेहद का बाप बरोबर है बिनका रचेता, नई दुनिया का स्थापन करने वाला है। तो जरूर हमारे बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी कितने ढेर हैं, ढेर के ढेर, जो मात पिता गाते भी रहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गने रे। अभी बरोबर निश्चय है कि बाबा है, और बाबा है तो बाबा के वर्षे का भी निश्चय है। इस बाबा में अगर निश्चय नहीं है तो फिर वर्षे में भी निश्चय नहीं है। बाबा में निश्चय कभी कोई 5% 10% नहीं होता है। बाबा मीन्स बाबा, वो गाया ही जाता है। क्या कहते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में देवी सुराज, फिर उनमें परसेंटेज का कोई हिसाब नहीं होता। चार 65 की वाणी का दूसरा पेज। परंतु जो कहते भी हैं कि 75%, तो उनमें तो कुछ भी निश्चय नहीं है। पचहत्तर परसेंट बाप में निश्चय है, ये तो होता ही नहीं है। माता में कोई 75% निश्चय होता है क्या? माता माने माता, बरोबर जानते हैं कि ये सभी बच्चे स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। सो तो मात पिता बगैर कोई भी नहीं दे सकता। तो बच्चों में खुशी बहुत होनी चाहिए। अभी खुशी क्यों नहीं रहती है? है? संशय क्यों हो जाता है? है, क्योंकि माया कोई न कोई रूप धारण करके बुद्धि का योग तोड़ देती है। तो घबरा जाते हैं क्या, बुद्धि योग तोड़ देती है, माया आ जाती है तो घबरा जाते हैं, बाबा अब हम क्या करें, जैसे बेहोश हो जाते हैं। अरे ये माया की लड़ाई है ना, तो राम के साथ लव कुश वगैरह की लड़ाई थी जो गाई जाती है ना, क्या लड़ाई, राम के बच्चों ने ही किससे लड़ाई की, अपने बाप से लड़ाई की। देखो राम के सामने माया का रूप धारण करके कौन आ गए हैं, उनके अपने बच्चे ही आ गए। अभी ये बात तो कभी हो ही नहीं सकती है कि रामचंद्र के साथ क्या, किसके साथ, कहते हैं भगवान रामचंद्र के साथ उनके बच्चे दुश्मन बन के खड़े हो गए। अरे बच्चे कहां से आए हैं, डबकुशा से, कहां से आए हैं, डब एक घास होती है नुकीली, उससे बच्चे आए। नुकीली घास कांटे की तरह, कैसा कांटा, दुख देने वाला या सुख देने वाला, दुखदाई जब कुशा से आए। अरे ऐसे कोई बच्चे थोड़े ही होते हैं, होते हैं जो बाप के ही दुश्मन बन जाए। किसी बहन ने कहा और वो बच्चों ने भी अश्व को पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया, अश्व माने मन रूपी घोड़े को पकड़ लिया, जब मन रूपी घोड़ा कर लिया गया तो बाप याद आएगा है, नहीं याद आएगा, यानी बहुत दंत कथाएं हैं और समझाते तो कोई समझते ही नहीं है क्या, कि वो बच्चे कहां से आए है, डबकुशा घास से आए, नाम रख दिया लव कुश, कौन हुए लव कुश है, कहते राम के बच्चे, राम त्रेता युग का, और और बच्चे दुखदाई कौन से धर्म के हुए? लव, बहक प्यार करने वालों का नाम क्या रख दिया? लव। और जो बहुत दुख देते हैं संसार को, एटम बम बनाए देते हैं अति का दुख देने के लिए, उनका नाम क्या रख दिया? कुछ कांटा। मन कहां से आए हैं वो बच्चे? कोई इस्लाम धर्म के, कोई क्रिश्चियन धर्म से आए। कहां आए? कौन से युग की बात है? हैं? इस संगम युग की ही बात है कि वो राम के बच्चे जो कहे जाते हैं, कोई इस्लाम धर्म को सपोर्ट करने वाले, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले, और कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले इस जन्म में आकर के बच्चे बन गए। तो बाबा ने पूछा, बोलते हैं कि भगवान ने जो ये लिखा है, ये थोड़े ही रंग लिख सकते हैं। परम प्रिय परम पिता पारलौकिक फादर, पारलौकिक फादर तो आत्माओं का हुआ ना, और वो ही बैठ करके सबको समझाते हैं। कभी कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारा 84 जन्म अभी पूरा हुआ। उसे 84 जन्मों का भी हिसाब दो, न कोई कहेगा और न कोई बताएगा। अभी तुमको तो ये सात शरीर छोड़ना है, जैसे कि इनका जीते जी मरना हो गया। तो किसकी गोद में मरना है? शिव बाबा की गोद में मरना। कहते हैं कि तुमको नंगा भेजा था, है कहां से? हैं? परमधाम से। नंगा भेजा था कि कपड़े पहन के आए थे? नंगा भेजा था। और फिर तुमने सूर्यवंशी राजाई में राज्य किया, अपनी राजधानी में राज्य किया ना, पीछे ऐसे 84 जन्म चक्कर लगाकर अब तुमको वापस नंगा चलना है, बाबा के साथ चलना है, बाप के साथ चलना है। तुम्हारे ऊपर पाप है, बाबा कारण गारंटी करते हैं कि मुझे याद करने से, इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। और पाप भस्म होने का और कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय बताया है? बाप की याद में ऐसी क्या खास बात? संग का रंग लगता है ना, बाप निष्पाप है, एक जन्म के लिए के सदाकाल के लिए, सदाकाल के लिए निष्पाप। पर पाप और पुण्य का कोई लेप छेद लगता ही नहीं। जब बाप के ऊपर पाप और पुण्य का कोई लेप छेप नहीं लगता और ऐसे बाप को तुम याद करेंगे तो तुम भी कैसे बनेंगे, है निष्पाप बन जाएंगे। पाप भस्म होने का और कोई उपाय नहीं, गंगा में स्नान करना फलाना करना वो तो मत्ति मार्ग है। ये नदियां तो सभी सागर से ही निकलती हैं, जहां देखो सारी दुनिया में नदियां ही नदियां हैं। और ये भारत की नदियां कहां से आई हैं? अमेरिका की नदियों में कोई स्नान करते हैं? पाप धोने जाते हैं सन्यासी? तो ये भारत की नदियां कहां से आई हैं? भारत से ही ज्ञान का सागर आते हैं, भारत में ही आते हैं ना। और ये ज्ञान गंगाएं भारत से ही निकलती हैं। इन्हें शास्त्रों में क्या लिख दिया? गंगा कौन लाया है? भागीरथ ने गंगा लाई। तो भारत क्या हुआ? भागीरथ हुआ। अभी नदियों के ऊपर है ज्ञान गंगाओं का चित्र तो दिखाते हैं ना, परंतु वो उनको देवियों का चित्र बनाई देते हैं कि ज्ञान से इनको सदगति मिली है, यानी मनुष्य से ये देवता बने। परंतु उसका अर्थ तो कोई भी नहीं जानते हैं। क्या अर्थ? हाँ, पहले ये गंगा नदी जो कांपेली नगर के किनारे बहती थी, वहां कालेश्वरनाथ मंदिर बनाया किनारे। उस मंदिर में गंगा की मूर्ति भी रखी हुई थी। कालेश्वर का मंदिर भी बना हुआ था। इसको कहते हैं कालों का काल, महाकाल। तो बाप बैठ करके ये समझाते हैं कि देवताओं को ज्ञान गंगा नहीं कहेंगे, जिसका देवता ही वेश होता है वो लोग चतुर्भुज बनाते हैं। अभी हम उनको ज्ञान गंगा नहीं कहेंगे। चतुर्भुज माने यानी के संस्कार मिलकर के एक हो जाएं। तो देवताओं को ज्ञान गंगा कहेंगे नहीं, नहीं उनमें ज्ञान है ही नहीं। अगर होता तो उन देवताओं का ज्ञान परंपरा से चला आता, इस बात में कोई संशय नहीं है। परंतु नहीं, ये ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है, क्योंकि ये तो बाप आकर के पढ़ाते हैं, शूटिंग में कब आते हैं बाप, है? है? 76 में आते हैं, और फिर प्रायः लोप कब हो जाता है? है? 28 है? फिर महाशिवरात्रि कब मनाई जाती? जब महाशिवरात्रि मनाई जाए तब तो घोर अंधेरा हो, और जब घोर अंधेरा हो तो ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा कि रहेगा, है? प्राय लोप हो जाता है, क्योंकि ये ज्ञान तो बाप आकर के पढ़ाते हैं। इससे क्या साबित हुआ कि ज्ञान भी सतो रजो और तमो से पसार होता है। पहले सतो प्रधान ज्ञान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। तमो माने घोर अंधकार, तो बाप आकर के सोझरा करते हैं। तो बाप पढ़ाएंगे तो संगम पर आकर के और बच्चों को राजाई देने के लिए पढ़ाएंगे, क्या क्या होता है? बाप आते हैं और एक सेकंड में है जीवन मुक्ति गाई हुई है, तो बच्चों को बहुत अच्छी खुशी होनी चाहिए। परंतु हाँ, इतना जरूर है, माया मुरझाए देती है। क्या माया क्या करती है? मुरझाए देती है। राम को कैसे मुरझाया है? लव कुश ने लड़ाई कर दी। इसलिए जैसे बस याद करो तो खड़ा हो जाए, एक छुई मुई की बूटी होती है, छुई मुई घास, उसको हाथ लगाओ तो मुरझाए जाती है। फिर आप ही खड़ी हो जाती है। तो यहां बताते हैं कि हे बच्चों, माया तुमको बेहोश कर देती है। फिर ये संजीवनी बूटी, इसको सूंघेंगे तो होश में आ जाएंगे। जो बच्चे महावीर हैं, एक दो को सावधान करने वाले पहलवान हैं, वो फिर आकर के उनको समझाते हैं, समझ जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं। बाकी कोई बूटी थोड़े ही सूंघाई। क्या गायन है लक्ष्मण को? कोई घास सूंघाई, कहां मिली? पहाड़ों पर मिली। पहाड़ का मतलब क्या हुआ है? ऊंची स्टेज, मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में ऐसी बूटी मिल जाती है। जब ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो भारत में ये अथाह दंत कथाएं हैं, यादगार हैं, अथाह मंदिर जिनका कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हैं। एक मंदिर का भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि एक को ही नहीं जानते। और एक को जानने से आधा कल्प के लिए विश्व के मालिक बन जाते, फिर भूल जाने से कंगाल बन जाते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ संगम में शूटिंग होती है। ओम शांति।